आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महंत अवैधनाथ सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, राज्य में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है सरकार। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को दिए कई अहम निर्देश। बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO पर कार्यभार कम करने को कहा। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में हो रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन। तमिलनाडु से आ रहे दलों को कराया जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के सभी बाघ अभयारण्यों में 10 दिसंबर से शुरू होगी बाघों की गणना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में महंत अवैधनाथ सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टीमों और उनके खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों के अंदर खेलों को लेकर देश में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है।
हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए, हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है, इनको लगातार सुविधाओं को बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री ने 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के तहत कुश्ती विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डीमरी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन्हें समय समय पर अलग अलग युगांतकारी घटनाओं ने संबल और शक्ति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO पर कार्यभार कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए। एक याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनके काम के घंटों को आनुपातिक रूप से कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा तैनात कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए जब भी BLO को कठिनाइयों का सामना करना पड़े राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया जारी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में SIR को लेकर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अभियान चल रहा है। मतदाता सूची शुद्धिकरण के इस कार्यक्रम में कोई पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। इसी क्रम में कल भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग एवं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने गौतम बुद्ध नगर में SIR प्रक्रिया की समीक्षा की। इस बीच हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया है कि जिले में SIR के तहत अब तक 72% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है।
हमारे जनपद में कुल 11,56,000 मतदाताओं के सापेक्ष लगभग 84% मतदाताओं का विवरण BLO ऐप के माध्यम से अपडेट किया जा चुका है और वर्तमान समय तक लगभग 72% मतदाताओं के डिजिटाइजेशन का कार्य और लगभग 20-22% मतदाताओं को ASDD कैटेगरी में फिट किया जा चुका है। तीनों ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम अब अपने अंतिम चरण पे है।
प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में सुधार करते हुए पेंशन भुगतान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सरल बना दिया है। इसके तहत पात्र वृद्धजन की पहचान और सत्यापन Family ID एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से स्वतः हो सकेगी जिससे पेंशन बिना देरी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के तहत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। कल नमो घाट पर नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए ज्ञान रचनात्मकता और मनोरंजन से परिपूर्ण विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया। क्रिएटिव पपेट थिएटर ट्रस्ट ने कठपुतली नाटक हिंद के सरदार के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी को प्रदर्शित किया। इससे पहले तमिलनाडु से आए दूसरे दल ने कल काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के सभी बाघ अभयारण्यों में 10 दिसंबर से बाघों की गणना शुरू हो रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि ट्रांजिट लाइन बनाने का काम शुरू हो गया है। श्री सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में मई 2026 के अंत तक बाघों की गणना पूरी हो जाएगी।
अखिल भारतीय बाघ गणना जो प्रत्येक 4 वर्ष में कराई जाती है, उसकी शुरुआत जो है पीलीभीत टाइगर में शुरू कर दी गई है और पीलीभीत टाइगर में 10 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये कार्य कराया जाएगा। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये जो कार्यक्रम है दिसंबर से शुरू होकर के मई तक चलेगा। प्रथम चरण में पीलीभीत तथा किशनपुर में होगा, द्वितीय चरण में दुधवा और आपके जो साउथ खीरी और बफरगढ़ डिवीजन है यहाँ पर होगा, तीसरे चरण में हमारा कतनिया घाट आएगा और चौथे चरण में दानीपुर टाइगर रिजर्व आएगा।
नोएडा में बने जंगल ट्रेल पार्क को लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस पार्क में करीब 650 जानवरों की आकृतियां लगाई गई हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
नोएडा के सेक्टर 95 में बने इस पार्क के अंदर कबाड़ से बने डायनासोर, गैंडा, मगरमच्छ, अजगर, बंदर की आकृतियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही छोटी आकृतियों में सुंदर सुंदर चिड़ियां भी कबाड़ से बनाई गई हैं। पार्क की यह खासियत है कि बच्चे जिस भी जानवर के सामने जाएंगे उसकी आवाज सुनने को मिलेगी। बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क, बोटिंग के अलावा नाइट सफारी का भी इंतजाम है। पार्क के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए अंडरपास भी बनाया गया है। पीपीपी मॉडल पर बने इस पार्क को बनाने में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
पिछले महीने से लागू की गई नई श्रम संहिताएं पूरे देश में श्रमिकों की आजीविका को स्थिरता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
नए नीतियों में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं देगा। इसके साथ ही इन कानूनों ने संगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना जैसे जीवन विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ तथा बुढ़ापे की सुरक्षा का हक भी पक्का किया है। इसके अलावा घर से दफ्तर आते जाते किसी दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों को पूरा मुआवजा भी मिलेगा। नए श्रम सुधार वेतन संरक्षण, कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाते हैं। अब निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक समान कार्य मानक तक बेहतर पहुंच और देश के विकास यात्रा में अपनी भूमिका को लेकर बेहतर पहचान की उम्मीद कर सकते हैं। दृष्टि के साथ अंकित, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नांदेड़ से पीलीभीत होकर उत्तराखंड के टनकपुर तक के लिए साप्ताहिक ट्रेन संचालन को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। इस ट्रेन के संचालित होने से पीलीभीत एवं बरेली के लोगों की व्यावसायिक गतिविधियां सशक्त होंगी। साथ ही पीलीभीत में रहने वाले सिख समाज के लोगों के लिए सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल तख्त सतखंड श्री हजूर साहिब तक की यात्रा आसान हो जाएगी। मथुरा, आगरा, झांसी और ग्वालियर जाने वालों को भी इस ट्रेन से लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने यह सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महंत अवैधनाथ सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, राज्य में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है सरकार। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को दिए कई अहम निर्देश। बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO पर कार्यभार कम करने को कहा। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में हो रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन। तमिलनाडु से आ रहे दलों को कराया जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के सभी बाघ अभयारण्यों में 10 दिसंबर से शुरू होगी बाघों की गणना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।